11 मेरा बच्चा भी गायब हो गया। आहान ने दादाजी से कहा, अपने माँ बाप के हत्यारे को भला मैं अपना चाचा कैसे मान सकता हूँ। इतने दिनों से मैं उससे कितने अच्छे तरीके से पेश आता रहा, उन्हें मान सम्मान देता रहा, लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा दादाजी, नहीं होगा मुझसे ये सब कुछ। अब आगे, तब दादाजी ने आहान को बेहद संजीदगी से समझाया, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा बेटे, फालतू की चीज़ों के बारे में मत सोचो, और तुम्हारा बड़ा भाई है ना, वो सब संभाल लेगा। तुम जाओ और जाकर रौनक का ख्याल रखो, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। तुम अब पिता बनने वाले हो, इस वक्त तुम्हारे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? दादाजी की बात सुनकर आहान के चेहरे पर सहमति के भाव थे, इसलिए उसने सिर हिलाकर हामी भरी और बिना कुछ कहे तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सच इतना ज़्यादा भयंकर होगा और इतना कुछ जाएगा उसकी ज़िंदगी में। वहीं दूसरी ओर, इस वक्त नानी माँ के साथ सारी लड़कियाँ मौजूद थीं और आस्था भी उनमें शामिल हो गई थी। नानी माँ की गोद में अंश लेटा हुआ था और अपनी मासूम आँखों से सबको खिलखिलाकर देख रहा था, और नानी माँ अपने हाथ हवा में लहराते हुए सबको एक एक तरीका बता रही थी किस तरह से आज फंक्शन की तैयारी होगी, और सारा फंक्शन सिर्फ घर की लेडीज से ही पूरा किया जाएगा और बाहर से कोई मेहमान नहीं आएगा, क्योंकि अंश की किडनैपिंग को लेकर वैसे भी घर में इतना बवाल मच गया था, इसीलिए किसी बाहरी लोगों को बुलाने की इजाज़त नहीं थी। एक और बात कि घर के आदमियों को भी कानो कान इस बात के बारे में खबर नहीं लगनी चाहिए। मैं बाद में भाई साहब से बात कर लूँगी, और फंक्शन हम यहीं हॉल में ही धूमधाम से करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें इस फंक्शन के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। तब रौनक ने अचानक कन्फ्यूज होकर पूछा, लेकिन नानी माँ, इस तरह से तो सबको पता चल जाएगा और सब आदमी हमें अपने अपने कमरों से भी झांक कर देख सकते हैं, इसीलिए आपको फंक्शन किसी अलग कमरे में करना चाहिए ताकि वहाँ हमें कोई ना देख सके और हमें प्राइवेसी भी मिले और हम धूमधाम से खुलकर फंक्शन एंजॉय करें। रौनक की बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिलाया। अगले ही पल नानी माँ ने कन्फ्यूज होकर आईब्रो से कोड़ी, कुछ सोचते हुए एकदम से बोली, फिर तो एक ही जगह बची है, वो है आस्था बिटिया का रूम, क्योंकि उसके जितना बड़ा रूम इस पूरे मैंशन में कहीं और नहीं है, हमने देख लिया है। हॉल के बाद अगर कोई बड़ी जगह है तो वो आस्था बिटिया का रूम ही है, तो इसीलिए हमें आस्था के कमरे में फंक्शन करना होगा। ये सुनते ही आस्था तपाक से बोली, बिल्कुल सही रहेगा नानी माँ, रही बात अरमान जी की, उनसे तो हम बात ही कर लेंगे, आप उनकी फिक्र मत कीजिए। आस्था की ये बात सुनकर सबका चेहरा अचानक ठिठक गया और सब मुंह बनाते हुए आस्था की तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर रौनक एकदम से बोल पड़ी, उफ़ो आस्था, अरमान भाई को भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना तुम तो जानती हो ना कि हमारे पति कितने ज़्यादा बदमाश हैं, वो ज़रूर हमारे फंक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमें गुपचुप तरीके से अपना फंक्शन करना होगा और हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना होगा। तब रश्मि कुछ याद करते हुए एकदम से बोली, अरे मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, आपको पता है मैंने आकाश जी को फ़ोन पर कहते हुए सुना था कि वो सब लोग आज रात 12 बजे तक अपना काम निपटा लेंगे, तो हमारे पास अच्छा खासा मौका है खुलकर एंजॉय करने, तो इसीलिए हम आज शाम को ही फंक्शन रख लेंगे और 12 से पहले ही सेलिब्रेशन खत्म कर देंगे, ठीक है? सबको रश्मि की बात सही लगी, इसीलिए सबने मन बना लिया कि वो अब सबसे पहले आस्था के कमरे को सजाएंगे, फिर नानी माँ के दिए हुए कपड़े पहनकर फंक्शन के लिए रेडी होंगे। जल्द ही रौनक ने ऑनलाइन डेकोरेशन का सामान मंगवा लिया था और डेकोरेशन का सारा सामान लेकर वो सब चुपके चुपके आस्था के कमरे की ओर जाने लगे। वहीं दूसरी ओर, अब राजेश का मिनी हॉस्पिटल में इलाज करने के बाद अरमान और बाकी सब एक बार फिर मीटिंग के लिए इकट्ठा हो गए। आहान अब अपनी जिंदगी का सारा सच जान चुका था। इस वक्त उसके अंदर ढेर सारी फीलिंग उमड़ रही थी, उसका मुंह उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अरमान को देखा वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके सीने से जा लिपटा। तब अरमान ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी पीठ थपथपाते हुए धीरे से आश्वासन दिया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का कड़वा सच पता चल चुका है, लेकिन ये वक्त इस तरह से आंसू बहाने का नहीं है, ठीक है? अरमान की बात समझते हुए आहान ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप हामी भरी। अरमान ने फिर सबकी देखकर बताया, और वैसे भी मैंने वसुंधरा और वीर को अविनाश के साथ अपने प्राइवेट फार्म हाउस पर भिजवा दिया है, क्योंकि मैं उन लोगों को इस तरह से अपने घर में रखकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। फिलहाल अपने डैड अभिमान जी को मैंने उनकी निगरानी के लिए छोड़ दिया है और उनके साथ सभी बॉडीगार्ड और अविनाश भी वहाँ मौजूद हैं। अरमान ने वापस आने के बाद सबसे पहले यही काम किया था, अभिमान जी को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि वसुंधरा और वीर का यहाँ आसपास रहना किसी भी तरह से ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए अरमान ने सीक्रेटली बिना किसी की नज़रों में आए उन्हें दूसरी जगह यानी कि अरमान के ही फार्म हाउस में शिफ्ट करवा दिया था, और अभिमान जी ने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए वसुंधरा और वीर को एक पल के लिए अकेला छोड़ना जरूरी नहीं समझा था। अरमान ने अभिमान जी को बताया कि उन दोनों के होश में आने के बाद वो उन्हें कुछ पैसे वगैरह देकर वहाँ से रफा दफा कर दे, और अगर उन्हें उन माँ बेटे पर शक हो तो उन्हें तुरंत कैद कर ले। इसकी पूरी जिम्मेदारी अरमान ने अपने पिता को सौंपी थी ताकि उसके पिता अपने ट्रॉमा डिप्रेशन से बाहर आएं और अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी ले, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि वो अरमान के लिए कितनी अहमियत रखते हैं, इसलिए जानबूझकर अरमान ने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, और फिलहाल अविनाश तो वहाँ उनकी मदद करने के लिए था ही। फिलहाल अब आकाश ने आहान को देखते हुए एकदम शांत आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंश की किडनैपिंग की वजह से घर की सारी लेडीज काफी ज्यादा प्रभावित हो गई हैं और मैं अपनी बीवी और अपनी बहनों को परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम हम लोग उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए उनके लिए कुछ खास करें। तो इसलिए ध्रुव और आहान, तुम दोनों मिलकर कुछ सोचो, क्योंकि इस मामले में हमारा दिमाग तो काम नहीं करता। जैसे ही आकाश ने ये कहा, सब लोग उसकी ओर सिर हिलाकर सहमति से देखने लगते हैं, क्योंकि अरमान ने उसे इशारा किया था कि घर की लेडीज को खुश करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। वैसे भी रश्मि और रौनक प्रेग्नेंट है, इस हालत में उन लोगों का स्ट्रेस लेना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी लोग एक दूसरे की शक्ल नासमझी में देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर का माहौल पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। अगले ही पल आहान ध्रुव के पास चला आया। उसे देखकर बेपरवाही से कंधे उचकाकर बोला, तो एक काम कर, तो अपना खुराफाती दिमाग लगाकर सोच के अब घर की लेडीज को किस तरह से खुश किया जाए, ठीक है? तब तक मैं अपनी हवा हवाई से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। बाकी सब भी वहाँ से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर आए, उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा हॉल खाली पड़ा है। अब आकाश रश्मि को अपने कमरे में ना पाकर पूरी तरह से दंग हो गया, और जैसे ही उसने ये देखा कि हॉल में भी कोई नहीं है, बल्कि नानी माँ भी गायब है और दादाजी भी अकेले अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं, तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। और आकाश को इतना परेशान देखकर सुमित, ध्रुव, आहान और अरमान भी वहाँ आ गए। जिस वक्त सभी के सभी नौकर जाकर अरमान के तहखाने में मौजूद थे और दादाजी भी अपने रूम में आहान के साथ थे।
तो इसलिए उस वक्त किसी को पता नहीं चला कि उन औरतों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, और सभी घर की लेडीज इस वक्त कहाँ गई हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वे सब अरमान सिंघानिया के कमरे में मौजूद थीं, और रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से किसी को उन लड़कियों की चहकने की आवाज़ें तक नहीं सुनाई दे रही थीं। अब आकाश ने उन लोगों की ओर सवालिया नज़रों से देखकर अगले ही पल कहा, घर की सारी लेडीज कहाँ गईं? रश्मि, वंशिका, रौनक, यहाँ तक कि राधिका और एंजल, आस्था, नानीमा, अंश, वो सब मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब ये सुनकर तो दादाजी पूरी तरह से सकपका गए और वो एकदम से बोल पड़े, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आस्था बिटिया को यहीं सबके साथ इस हॉल में ही बैठे देखा था। क्योंकि जिस वक्त दादाजी अपने कमरे में आहान से बातें करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने आस्था को बाकी सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए देख लिया था। आस्था उस वक्त नानीमा के साथ मौजूद थी, तो इसीलिए उन्होंने रैंडमली जैसे ये बताया। तो वैसे ही ये सुनकर अरमान का दिल धक से रह गया। अगले ही पल वो धीरे से रूखे अंदाज में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ जाकर घर का हर एक कमरा चेक करो, वो सब यहाँ से कहाँ जा सकती हैं? सब जल्दबाजी में दौड़ दौड़कर अपने अपने कमरे की तलाशी करने निकल पड़े। अरमान इस वक्त हॉल में ही अकेला खड़ा रहा। किसी को भी अरमान का रूम चेक करने का आइडिया नहीं आया, और सभी मुंह लटकाए वापस वहां आकर इकट्ठा हो गए। सबका चेहरा पूरी तरह से उलझन में था। कोई भी लेडीज घर पर नहीं है, कहीं उन लोगों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कहीं ब्लैक डेविल ने कोई चाल तो नहीं चल दी है? आकाश परेशान होकर कहा, उसकी आंखों में तनाव भरा था। ये सुनकर सबका दिल जोरों से धड़कने लगा और उन सबको अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह से उनके घर की कोई भी लेडीज अचानक से गायब हो जाएंगी। सबकी हैरानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और सब अविश्वास से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उनके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के भाव साफ नजर आ रहे थे। वहीं आहान तो ये सुनकर तुरंत रो पड़ा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू बहने लगे। वो रूंधे गले से बोला, मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है, वो खुद तो गायब हुई ही, मेरे बच्चे को भी साथ ले गई और मेरा बच्चा भी गायब हो गया। अब आहान की बेतु की बात सुनकर वो सब उसे आईब्रो से कोड़कर घूरने लगे। आहान तुरंत उन सब की ओर देखकर एकदम से बोल पड़ा, ये क्या बार बार आप लोग मुझे ऐसे मुंह बनाकर घूरते रहते हैं? मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर मेरी बीवी गायब हो गई तो मेरा बच्चा भी गायब हो गया। प्लीज उसे कोई ढूंढो। अरमान भाई, प्लीज फटाफट से अपनी फौज को लगाओ, मेरा बच्चा ढूंढो। अगर इस मामले में विवेक चाचा का कोई हाथ हुआ ना, इस बार मैं अपने हाथों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही आहान ने ये कहा, वैसे ही वो सब उसे आश्चर्य से घूरने लगे। फिलहाल वो सब फटाफट से गाड़ियों की चाबी लेकर सड़कों पर अपने अपने रास्ते निकल चुके थे उन सब लड़कियों को खोजने के लिए। लेकिन इस बीच किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं रहा कि एक बार वो अरमान के रूम में भी जाकर चेक कर लें। क्या पता कि उनके दिल का सुकून इस वक्त अरमान के रूम में ही मौजूद हो। किसी को भी इस बात का दूर दूर तक ख्याल नहीं रहा और सभी बेचैन होकर उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े थे। वहीं अरमान का दिल बेहद जोर से धड़क रहा था। अंश और आस्था से वो थोड़ी देर पहले ही मिला था। उसने ही आस्था से कहा था कि वो चेंज करके जाकर नानी माँ से मिले और सबके साथ ऐसे खुशी के पल बिताए। लेकिन अब उसे खुद ही बुरा लग रहा था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी घबराहट और उसके दिलो दिमाग में उमड़ते हुए इमोशंस को संभाला। वहीं दूसरी ओर कमरे में, पूरे कमरे को दुल्हन की तरह सजाने के बाद आस्था ने रौनक को खूबसूरत सा लाल रंग का जोड़ा पहनाकर रेडी कर दिया था और सबने मिलकर जल्द ही गोद भराई की रस्म स्टार्ट कर दिया।
नानी माँ ने जल्द ही उसकी आरती करने के बाद बड़ा सा चंदन कुमकुम का टीका उसके माथे पर लगा दिया और उसे प्यार से कुछ फल, फ्रूट्स और मिठाइयाँ खिलाने लगी। और फिर सभी ने भी बारी बारी से रौनक को इस तरह से फल, फ्रूट्स, मिठाइयाँ खिलाई थी और उसकी गोद में कुछ नारियल वगैरह रख दिए थे और कुछ पैसे डाल दिए थे। सभी ने मिलकर रस्मों रिवाजों की तैयारी की थी। उसी हिसाब से सबने जो जो गिफ्ट्स लाए थे वो सब रौनक को मुस्कुराते हुए दे दिए। रौनक उस पल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। ये सब कुछ कितना फीका फीका लग रहा है, प्लीज थोड़ा सा डांस वांस करो ना, ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा है, रौनक ने खुशी से एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर अगले ही पल सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। फिर आस्था रौनक को छेड़ते हुए बोली, अरे रौनक तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, हम है ना डांस करने के लिए और आज हम ऐसा धमाल मचाएंगे कि देखना कितना मजा आएगा। और तभी नानी माँ एकदम से बोली, हाँ हाँ बेटिया आप सब धमाल मचा लेना, लेकिन उससे पहले खुद का थोड़ा सा मेकअप वगैरह अच्छे से कर लो। सभी ने नानी माँ के दिए हुए कपड़े तो पहले ही पहन लिए थे। नानी माँ ने सभी लड़कियों को एक जैसे कपड़े दिए थे। उन्होंने आस्था को पचरंगी कलर का लहंगा चोली दिया था, पचरंगी कलर का ही राधिका को, एंजल को और रश्मि को भी सेम कलर दिया गया था, लेकिन वंशिका के कपड़े पूरी तरह से अलग थे क्योंकि इस बार वंशिका को लड़का बनाया गया था। वहां का आलम यह था कि रौनक का दिल कर रहा था कि वो खुद ही उठकर डांस करे। रौनक अचानक से चहकते हुए बोली, नानी माँ प्लीज मुझे भी डांस करने की इजाजत दीजिए ना, इन लोगों को क्या डांस आएगा, इनको तो डांस मैं सिखाती हूँ और वैसे भी वंशिका तो मेरे जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी, आपने देखा था ना मैंने कितनी अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस किया था और कैसे सब लोगों को यकीन भी आ गया था कि मैं एक लड़का ही हूँ। ये सब कुछ बोलते हुए एक बार फिर रौनक को वो सारी बातें याद आ गई। उसकी बातें सुनते ही सभी खिलखिला के हंस पड़े। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था अरमान के दिमाग में और आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।